सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
हम लोगों ने पिछले छत्र में देखा था कि अर्जुन जो है युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के पास में समर्पण किया. उसने कहा नहीं यह चेयसना स्यात निश्चितम ब्रहुतन में शिष्य ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न. हमारे लिए क्या श्रेय है ये मेरे को बताओ. मेरे को अभी जो है धर्म के बारे में युद्ध भूमि में मेरा क्या धर्म है इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा मोह हो गया है, थोड़ी सी भ्रांति हो गई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है. मेरे को ये बताओ और मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ. मैं आपको अपना सरेंडर करके आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ. इसके पश्चात वो कहते हैं अर्जुन कहाँ न योत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव. और इतना कहकर वो चुप हो गया और बैठ गया. इसके बाद भगवान ने हम लोगों ने देखा था कि शंकराचार्य ने विश्लेषण किया था कि अगर आपको शोक है तो वो शोक जो है आत्मज्ञान को छोड़कर और किसी तरीके से नहीं जा सकता. हम जो है सिचुएशन बदलते रहते हैं, व्यक्ति बदलते रहते हैं, परिस्थितियों के बदलने की चेष्टा करते रहते हैं, मगर वो कभी शोक जाता नहीं है. अगर परमानेंटली आपको शोक को अगर हटाना है तो आपको आत्मज्ञान लेना पड़ेगा. दूसरा कोई आपके पास में अल्टरनेटिव नहीं है. तो उन्होंने 11वें श्लोक में कहा कि असोचान अनवसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे कि आप जो है शोक कर रहे हो. जिनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उनके बारे में शोक कर रहे हो. भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आत्मा की दृष्टि से बराबर नित्य हैं. उनकी मृत्यु नहीं होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है. और प्रज्ञावादांश भाष से आप प्रज्ञावान की तरह जो है कहते हो, मगर कर्म आपके कैसे हैं. बोले कर्म आपके जो है प्रज्ञावान का उल्टा होता बुद्धू. बोले आपके कर्म बुद्धू की तरह हैं. क्यों. बोले रो रहे हो, बातें आप बड़ी अच्छी अच्छी करते हो प्रज्ञावान की तरह, बहुत बुद्धिमान हो, इतने आपने तर्क वगैरह सब दिए, मगर अभी आप रो रहे हो. देखो शोक को है हमको दो दृष्टि से समझना है. शोक की दो दृष्टि है. एक तो पारमार्थिक दृष्टि है. पारमार्थिक दृष्टि क्या है कि आप जो है वो जीव नहीं हो, आप आत्मा हो और आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है. आत्मा नित्य है, इसलिए शोक का कोई कारण ही नहीं बनता है. अभी तो युद्ध भूमि में लड़ाई नहीं शुरू हुई थी, केवल उसने सोचा ही कि इन ये हमारे तीर से ये सब मारे जाएंगे, मैं इनकी मृत्यु का कारण बनूंगा. इस सोच के कारण ही वो दुखी हो गया और रोने लग गया. तो पारमार्थिक दृष्टि से शोक का कारण बनता ही नहीं है क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं है. और व्यवहारिक दृष्टि से भगवान ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन तुमने ही इन लोगों को आतताई कहा था. आतताई का मतलब होता है टेररिस्ट. और मनुस्मृति में एक लिखा हुआ है, हमने आगे भी आपको बताया है कि आतताई को मार डालना चाहिए। तो अगर ये आतताई है तो मारोगे तो इसमें क्या है? ठीक है, ये तो भी शोक नहीं करना चाहिए, ये तो आतताई है। कौरव पक्ष में जितने भी खड़े हुए थे सब आतताई हैं, और आतताई कौन कौन होते हैं वो हम लोगों ने देख चुके हैं, हम लोग पहले अध्याय के अंदर किसको हम आतताई कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि पहले शोक आता है कि पहले मोह आता है? अगर हम ये कह लें कि चलो मोह पहले आया, मोह क्या है? मोह मतलब भ्रांति, भ्रांति के कारण शोक आया। क्या भ्रांति है, क्या अज्ञान है हमको? अनात्म वस्तु में आत्मा की बुद्धि रखना, ये है हमारी भ्रांति। दुनिया में केवल दो चीजें हैं, एक है आत्मा, बाकी सारी चीजें आंख बंद करके आप कह देना अनात्मा है। टेबल क्या है? आत्मा ना अनात्मा? अनात्मा। दुनिया की हर वस्तु आत्मा को छोड़कर बाकी सब अनात्मा है। अनात्म वस्तुओं में आत्मा की बुद्धि रखना ही भ्रांति है। अच्छा, आपने उसके अंदर रख दिया, रखने से क्या होता है? अहम एसाम मम एते, फिर ये बुद्धि आ जाएगी। जैसे ही अनात्म वस्तुओं के अंदर आपने आत्मबुद्धि रख ली कि ये सत्य है, ये रहेंगी चीजें, फिर उसके साथ क्या होता, ममता बढ़ती जाएगी आपकी। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। और हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन का जो विषाद है उसका सूत्र क्या था, जब उसको खड़ा कर दिया गया था द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने, उसके मन में ये आया कि ये मेरे गुरु हैं और ये मेरे पितामह हैं, मैं इनके गोदी में खेला हूँ और ये मारे जाएंगे, ये उसको भ्रम हो गया। ये मेरे हैं, मैं उनका हूँ, इसको हम लोग कहते हैं अर्जुन रोग, अर्जुन डिजीज। और ये डिजीज हम सबके पास है, ये अभी तक चली आ रही है। सब कोई जो है इस माया ममता के अंदर में ये फंसे हुए हैं। और ये जाएगा कैसे? बोले ये ज्ञान से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। कैसा ज्ञान है? देखो, हमने उपाधि जो अनात्म वस्तु है उसको आत्मा समझा है। शरीर जो है वो क्या है? अनात्मा है। इस अनात्मा को हमने आत्मा समझा और इससे जितने भी जुड़े हुए रिश्तेदार हैं सबको अपना आत्मा समझ लिया। देखो कैसे ममत्व तो बढ़ता है। पहली ममता अपने शरीर से हुई, उसके बाद इस शरीर से भी जितने जुड़े लोग हैं उनके साथ में ममत्व बढ़ता जाएगा, दायरा इसका बढ़ता जाएगा। या वस्तुएं जितनी हैं, जिनसे जिनसे आपको प्रेम है, घर से प्रेम है, गाड़ी से प्रेम है, आपके बैंक बैलेंस से आपको प्रेम है, इन सब के साथ जो है ममत्व बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर क्या होगा, आप जैसे ही ये ममत्व बढ़ेगा तो आपका शोक होगा। क्यों शोक होगा? शोक अनिवार्य है। देखो, अनात्म वस्तु एक न एक दिन जाएगी। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सारी अनात्म है और सब की सब एक दिन नष्ट होंगी। सारा ब्रह्मांड एक दिन नष्ट होगा। जिस दिन नष्ट होगा उस दिन आपको सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा, तो ये दुख देंगे। अच्छा, जब शोक आता है, जब दुख आता है ना, तो आदमी अपना स्वधर्म छोड़ने को तैयार हो जाता है। जैसे अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आया था लड़ने के लिए और वो तर्क दे बैठा कि मैं भीख मांगने को तैयार हूं मगर युद्ध नहीं करूंगा। हम भी ऐसा करते हैं, अपना स्वधर्म छोड़ के परधर्म फट से पकड़ लेते हैं, शॉर्टकट पकड़ लेते हैं। और जैसे ही हमने अपना स्वधर्म छोड़ के परधर्म पकड़ लिया, तो जिन्होंने थोड़ा सा वेदांत पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा कि स्वधर्म पालन करने से वासना कम होती है और पर धर्म पालन करने से वासना कमती तो नहीं होती है, परम धर्म की वासना और आ जाती है। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आपका जो है कैपिटल ऑफ वासना, जिसको हमको अपने इस शरीर में मनुष्य देह में कमती करना चाहिए था, वो और बढ़ गया। उस बढ़ने के कारण क्या होता है कि उसको हम लोग कहते हैं ये ब्लूप्रिंट है। हमने भगवान को कह दिया कि मेरे इतनी इच्छाएं हैं, इतनी अनिच्छाएं हैं, इतने राग हैं, इतने द्वेष हैं, इसके लिए, इसकी पूर्ति के लिए मेरे को उचित एक शरीर दो। और भगवान हमारी वासनाओं के हिसाब से उचित शरीर दे देते हैं, वो उसमें कोई काट छांट नहीं करते हैं, वैसे ही आपको शरीर दे देते हैं। तो अगर मोह पहले आता है तब भी देखो आप जो है संसार के चक्र में फंसते गए, आपका जो है वासना बढ़ गई और आप उसके अंदर चले गए। मान लो शोक नहीं है, शोक नहीं है, फिर आदमी क्या करता है? तो सब व्यक्ति साकाम कर्म करते हैं। साकाम कर्म करना का मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करते हैं? शास्त्र को बिना पढ़े करते हैं। शास्त्र को नहीं पढ़ने का मतलब क्या होता है कि इच्छा पूर्ति का जो तरीका शास्त्र में बताया गया है, जिससे उस हिसाब से करने से आपका मन शुद्ध हो जाए, वो तरीका हमें मालूम नहीं है। नहीं मालूम होने के कारण हम ऐसे तरीकों से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं कि हमारी वासना बढ़ती रहती है और मन अशुद्ध होता रहता है। तो इस जीवन में जो मन शुद्ध करना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो असोचा नाम अनवसोचतम और प्रज्ञावादांश भाष से इस लाइन को हम लोग कहते हैं वस्तु संग्रह वाक्य। वस्तु संग्रह वाक्य का मतलब जैसे होता है ना, एक चैप्टर के ऊपर एक टाइटल लगा देते हैं ना, तो वैसे ही ये टाइटल है। तो पहला जो पाद है असोचानन अनवसोच, इसके बारे में भगवान जो है 12वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक इसको डिस्कस करेंगे। एक पाद के ऊपर में, एक पार्ट के ऊपर में भगवान जो है 12 से लेके 30 श्लोक तक उसको डिस्कस करेंगे और प्रज्ञावादांश भाष से उसको जो है 31 से लेके 38 श्लोक तक इसका विश्लेषण भगवान करेंगे। तो आत्मशोक का कारण क्या हुआ? मैं और मेरे। और इस संबंध के कारण होता क्या है? बोले द्वंद्व बढ़ते हैं आपके। द्वंद्व मतलब पेयर ऑफ अपोजिट, पेयर ऑफ अपोजिट सुख दुख आएंगे, मान अपमान होगा, अच्छा खराब होगा, ये आपको पेयर ऑफ अपोजिट आते ही जाएंगे, कंटिन्यूस आते जाएंगे। तो इसको हटाएं कैसे? बोले इस अज्ञान को आपको ज्ञान से हटाना होगा, तब आप प्रज्ञावान बन पाओगे। जब तक इस अज्ञान को आप ज्ञान से नहीं हटाओगे, कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। तो शोक का अचूक दवाई जो है वो आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान छोड़ के दूसरे किसी तरीके से आप तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मवित है तरति शोकम, उसको शोक नहीं लगता। और दूसरी लाइन में कहा गता सुन अगता सुन से नानु सोचंती पंडिता। पंडिता, पंडित कौन है? जिनको, जिनके पास में आत्मविद्या है उसको हम पंडित कहते हैं। पंडित लोग क्या कहते हैं? गता सुन अगता सुन, सुन मतलब प्राण, गता सुन जिसके प्राण चले गए हैं, और अगता सुन का मतलब जिसके प्राण नहीं गए। गता सुन जिसके प्राण चले गए, अगता उल्टा, अगता सुन जिसके प्राण नहीं गए हैं। नानु सोचंती पंडिता, पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। पंडित लोग क्यों नहीं शोक करते हैं? इसका मतलब क्या है कि वो पंडित लोग क्या क्रूर है? क्या वो क्रूयल है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए शोक नहीं करते हैं कि उन्होंने अपने शरीर और अनात्म वस्तुओं से तादात्म्य नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि उनके यहां भी कोई शोक का कारण नहीं बनता है, वहां भी शोक आता रहता है, मगर तादात्म्य नहीं किया है उन्होंने। और दूसरे को, किसी को शोक आ जाए तो फिर क्या करते हैं? बोले पंडित लोग जो है उनके प्रति बड़ी करुणा रहती है। अपना दुख आ जाए तो वो सोचते हैं कि ये तो अनात्म वस्तु का दुख है, चलो छोड़ दो, हटाओ इसको, ये तो आएगा ही। मगर दूसरे किसी को दुख आ जाए फिर उनका क्या व्यवहार होता है? उनका व्यवहार होता है, बहुत करुण होते हैं फिर वो, ऐसे लोगों के प्रति वो बहुत करुण हो जाते हैं। इसके बाद जो है भगवान फिर कहते हैं 12वां नंबर श्लोक,
नत्वे वाहम जातु नासम,
नत्वे वाहम जातु नासम,
न त्वं ने मे जनाधिपाः न त्वं ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्
सर्वे
वयमतः परम् न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्।
अब जो है ज्ञानी को शोक क्यों नहीं होता है? देखो शोक के केवल दो सोर्स हो सकते हैं, दो जगह हो सकती हैं। दुनिया में दो ही वस्तुएं हैं, दूसरी है ही नहीं, तीसरी वस्तु कोई नहीं है। क्या है दो वस्तु? एक है आत्मा और एक होता है अनात्मा। ये तो आपको याद हो गया होगा अब तक। तीसरी वस्तु दुनिया में है नहीं है, एक है आत्मा दूसरी है अनात्मा। भगवान 12 से 17वें श्लोक तक भगवान ये कहेंगे कि आत्मा से कभी शोक नहीं आ सकता। अगर आत्मा से शोक नहीं आ सकता है और शोक हमको लगता है, शोक का अनुभव हमको होता है, तो फिर शोक कहां से आता है? आत्मा अनात्मा। भगवान कहने जा रहे हैं कि आत्मा से कभी शोक नहीं आ सकता। शोक कहां से आएगा? सिंपल है, लॉ ऑफ रिमाइंडर। अनात्मा से शोक आएगा। क्यों होता है शोक अनात्मा से? क्योंकि हर अनात्म वस्तु जो है चेंजिंग एंड पेरिशेबल है। ये याद रखिएगा बराबर, सारी की सारी अनात्म वस्तुएं जो हैं वो बराबर उसमें विकार और परिवर्तन होता रहता है। आत्मा में कभी विकार और परिवर्तन नहीं होता है। जहां जहां विकार होगा, जहां जहां परिवर्तन होगा, वहां से आपको दुख आएगा। तो दुख का एकमात्र स्थान कहां, क्या है? अनात्मा। आप अनात्मा किसको कहेंगे? हम बोले जो कुछ भी इस दुनिया में आपको दिखाई पड़ता है वो सारे का सारा अनात्मा है। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, सूर्य है, चंद्र है, मकान है, घर है, बींग्स हैं, पर्संस हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी, जो भी आपको दिखाई पड़ता है, सूर्य है, चंद्र है, सब की सब चीजें विनाशशील हैं। क्योंकि ये सब चीजें विनाशशील हैं, इसलिए भगवान ने इसको क्या कहा है? दुखालय। ये सारा का सारा संसार को भगवान ने आगे जाके 8वें अध्याय में कहा ये दुखालय है। आलय मतलब घर, दुख का घर है। विद्यालय, विद्यालय का मतलब विद्या का घर। अब विद्यालय में जाएंगे क्या मिलेगा आपको? विद्या मिलेगी। पुस्तकालय में? दुखालय में। और हम क्या खोज रहे हैं दुखालय में? सुख खोजने की चेष्टा करते हैं। बहुत दिन तक प्रयास किया मगर आज तक सुखी हम नहीं हो पाए। ये सब आपका अनुभव है, मेरा अनुभव भी है, आपका भी है। बहुत दिन प्रयास किया, सारी जिंदगी प्रयास करते रह गए मगर हम नित्य रूप से, स्थायी रूप से कभी भी सुखी नहीं हुए। अब भगवान कहते हैं न तू एव जातुम, जातु मतलब पास्ट में, ऐसा कभी नहीं था कि पीछे आप नहीं थे या मैं नहीं था। अहम न आसम, भगवान अपने बारे में कहते हैं मैं भी था, इस जन्म के पहले मैं भी था। न त्वम, तुम भी पीछे थे। न जनाधिपा, ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं, जनाधिपा जितने भी राजागण उस तरफ में खड़े हुए हैं, जिसके कारण, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, ऐसा नहीं था कि वो पिछले शरीर में नहीं थे, थे सब थे। न चैव न भविष्याम, दो बार न कर दिया इसमें भगवान ने, न चैव न भविष्याम, तो ये जोर के कहते हैं, जोर से कहते हैं कि ये भविष्य में भी रहेंगे। देखो अर्जुन को भी उन्होंने एक उपदेश दे दिया। अर्जुन पहले अध्याय में एक जगह कह चुका था कि अगर मैं बिना शस्त्र के निहत्ता भी खड़ा रहूं और लोग मुझको मार दें उधर से, तब भी वो अच्छा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक तर्क उसका यह भी था। तो भगवान ने उसको उत्तर दे दिया अर्जुन को, देखो हम लोग के शरीर छोड़ने के बाद भी हम सब रहेंगे। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि इस शरीर के पहले भी हम थे, इस शरीर के बाद में भी हम रहेंगे, और इस शरीर में सामने तुम्हारे हैं, इसके बारे में तो आपको कोई चिंता नहीं है। तो ये भगवान किस दृष्टि से कह रहे हैं? शरीर की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से। देखो अभी भगवान जो है केवल आत्मा के लेवल से बात करेंगे कि आत्मा जो है नित्य है, आत्मा में कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता। और तुम क्या हो? बोलो तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये ज्ञान हमको होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है? हम आत्मा हैं। अच्छा मृत्यु फिर किसकी होती है? मृत्यु किसकी हुई? मृत्यु शरीर की केवल होती है जो परिवर्तनशील है, और वो मरेगा। ज्ञानी का भी शरीर मरेगा, उसको मालूम है कि ये भी शरीर जाने वाला है। तो इसलिए गुरुदेव कहते थे एवरी बॉडी डाइज, एवरी बॉडी डाइज बट नोबडी डाइज मतलब आत्मा की दृष्टि से कोई नहीं मरता। शंकराचार्य जी कहते हैं किसी काल में मैं नहीं था ऐसा नहीं, किंतु अवश्य था। मतलब आपके पिछले भी जन्म जितने भी हुए हैं, भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं था कि मैं केवल इस कृष्ण रूप में ही हूं, इसके पहले भी मैं था। अर्थात भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं सदा ही था। तो उत्पत्ति और विनाश किसका होता है? बोले केवल शरीर का होता है, और वो होगा भी, चाहे वो ज्ञानी का शरीर हो चाहे अज्ञानी का शरीर हो, वो उसका विनाश होगा ही होगा। वैसे ही तू नहीं था सो नहीं किंतु अवश्य था। बोले अर्जुन तुम भी थे, ये नहीं था कि पहली बारी तुम जो है यहां पर अभी खड़े हो, उसके पहले तुम नहीं थे। नहीं तुम थे। और ये जो राजागण नहीं थे सो नहीं किंतु ये भी अवश्य थे, ये राजा भी सब थे। किस दृष्टि से ये सब थे? आत्मदृष्टि से सब थे, सब हैं और सब रहेंगे। इसके बाद अर्थात इन शरीरों के नाश होने के बाद भी हम सब नहीं रहेंगे सो नहीं किंतु अवश्य रहेंगे। शरीर का नाश होगा, शरीर का परिवर्तन होगा, मगर आत्मा की दृष्टि से हम सब रहेंगे। अभिप्राय यह है कि तीनों कालों में ही आत्म रूप से सब नित्य है, आत्म रूप से सब नित्य है तीनों कालों में। तो आत्मा जो है सर्वदा रहता है, तीनों कालों में रहता है। बहुत अच्छा। अब और इसके आगे भगवान क्या कहना चाहते हैं? देखो आत्मा के निर्देशक बहुत हैं। जैसे हम आत्मा को कहते हैं वो सत्य है, वो चित स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, ये हम कहते हैं ना। वो अचिंत्य है, उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते। अनिर्वचनीय है, उसको हम जो है डिफाइन नहीं कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग कहते हैं। मगर एक और उसका इंडिकेटर है, निर्देशक है, उसको हम कहते हैं वो नित्य है। तो भगवान अभी जो कहने जा रहे हैं, जो भी कुछ कहेंगे वो आत्मा की नित्यता के ऊपर कहेंगे कि आत्मा इटर्नल है, आत्मा में कोई विकार नहीं होता, उसकी जन्म मृत्यु नहीं है। देखो हम भगवान को अर्जुन को शोक से निकालना है, और पहले ही शंकराचार्य जी ने कह दिया है कि शोक से निकलने का एकमात्र तरीका आत्मज्ञान है। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन का ये प्रश्न था कि मेरी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है, उसको मेरे को कार्पण्य दोष लग गया है, मेरे को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस युद्ध भूमि में मेरा धर्म क्या है। उसका प्रश्न था धर्म के प्रति, मगर भगवान ये समझ गए कि इसको शोक हो गया है और ये शोक कौन सा है, मैं और मेरे वाला रोग है इसका। तो इस रोग का निवारण केवल आत्मज्ञान से होगा, इसलिए भगवान आत्मज्ञान से शुरू करते हैं, आत्मा की नित्यता वो बताएंगे। आगे देखते हैं फिर।
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति।
देही कौन है? बोले जिसका देह है वो देही है, जो देह का मालिक है वो देही है। तो देही यहां पर आत्मा है और उस आत्मा का ये एक घर है, एक शरीर है, और ये हमारा सबका अनुभव है कि इस शरीर के अंदर विकार होता है। उसमें कौमार अवस्था आई, यौवन अवस्था आई, जरा अवस्था आई। जरा मतलब बुढ़ापा आएगा, हमने बचपन भी देखा, हमने जवानी भी देखी और उसके बाद बुढ़ापा भी आने वाला है। ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं, विकार आता रहता है, मगर हमने क्या किया, हमने गलती क्या की? मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हूं। अरे ये तो शरीर बचपन और जवानी के अंदर से गुजरता है, मैं नहीं गुजरता। जो अनुभव करता है, जैसे हम, मैं बचपन में जो अनुभव किए वो मैं वैसा ही है। जब बचपन खत्म हो गया, बचपन की मृत्यु हुई, जब जवानी आई, जवानी का जन्म हुआ, बचपन की मृत्यु के साथ में जो अनुभव करता मैं था वो मरा नहीं। मरा क्या? बचपन में जो मैं था, अनुभव करता मैं, उसके बाद बचपन खत्म हुआ, जवानी आ गई, जवानी का जब जन्म हुआ, फिर जवानी की जब मृत्यु हुई, तो क्या मैं की जन्म मृत्यु हुआ? अनुभव करता वैसा ही रहा। उसके बाद बुढ़ापा आया और बुढ़ापे के बाद में फिर जन्म होगा, मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। तो ये जो है कौमार अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा, इसमें जो मैं एक ही था, इसका अनुभव हम सबको है, इसका अनुभव सबको है। मगर मरण के बाद में फिर दूसरा जन्म होगा, इसका अनुभव हमारे पास नहीं है। यहां भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो कौमार, यौवन और जरावस्था वो किसकी है? वो शरीर की है, और देही वो शरीर से भिन्न है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं जिसका देह है वह देही है, देही मतलब आत्मा। उस देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा की इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमार्य, बाल्यावस्था, यौवन, तरुणावस्था, जरा, वृद्धावस्था, ये परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएं होती हैं। देखो आत्मा के ऊपर आत्मा के एक शरीर है, शरीर के अंदर ये परिवर्तन होते रहते हैं, ये हमारा सब अनुभव है। इनमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। पहली अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था, कौमार्य। उसके नाश होने से क्या आत्मा का नाश हुआ? ये आपका अनुभव है कि नहीं, बताओ पहले। हाँ, नहीं नाश हुआ। और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। आप जब जवान हुए तो क्या आपका फिर से जन्म हुआ क्या? आत्मा का नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है कि निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती हुई देखी गई है। निर्विकार आत्मा हम क्या कहते हैं? मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं। मैं को, मैं तो आत्मा है, मैं को क्यों बच्चा जवान बना रहे हो? शरीर को कहो शरीर जवान है, शरीर अभी बच्चा है, या शरीर बुढ़ा हो गया। हम कहते हैं मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हो गया। हमने परिवर्तन सारे मैं के ऊपर, आत्मा के ऊपर डाल दिए। वैसे ही निर्विकार आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति, अर्थात इस शरीर के दूसरे शरीर का नाम देहांतर है, देह का अंतर। सेम आत्मा, देखो अपना अनुभव बचपन, जवानी और वृद्धावस्था का हमको अनुभव है, मगर जब ये शरीर छोड़ के, सेम आत्मा, दूसरा नहीं है कोई, सेम आत्मा जब वो दूसरा शरीर लेता है, इस शरीर को जाता है, दूसरा शरीर लेता है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, धीरा तत्र न मुह्यति। धीरा मतलब कौन है, जिनको ज्ञान हो चुका है। न मुह्यति, न मुह्यति मतलब उनको किसी किस्म का मोह नहीं होता है। बुद्धिमान इस विषय में मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं प्राप्त होता है? इसलिए प्राप्त नहीं होता है कि उसको अब दो चीजों का मालूम हो गया है। एक तो अनात्म वस्तु कभी भी नित्य नहीं हो सकती, इसमें विकार और विनाश आएगा, ये जो है प्रकृति का नियम है, इसको हम नहीं बदल सकते। और आत्मा, आत्मा निर्विकार है और उसमें कोई किस्म की मॉडिफिकेशन या कोई चेंजे कुछ नहीं होता है, एज इट इज वो रहता है सारा जीवन। तो अब दो चीजें उपलब्ध हैं आपके पास में, एक जो है आपको टेम्पोररी सुख देता है और दुख भी देता है। कौन सा कौन सुख देता है और दुख देता है? आत्मा, अनात्मा। ओह वेरी गुड, यू आर प्रेजेंट। तो अनात्मा आपको सुख दुख देता है और आत्मा भी अवेलेबल है, दोनों ही अवेलेबल है, और ये आत्मा आपको परमानेंट सुख देगा। बताओ कौन सा लोगे आप? मैं कंडीशन एक है बस, एक को छोड़ना होगा, दूसरे को पकड़ना होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम अनात्मा को भी साथ से पकड़ेंगे, आत्मा को भी साथ से पकड़ेंगे, दोनों आत्म को चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, वो नहीं होगा। Among two, you have to choose one. अभी किसको पकड़े हैं? अनात्मा को। वेरी गुड अम्मा, इसलिए हम दुखी होते हैं। और अगर हम आत्मा को पकड़ लें, अनात्मा को छोड़ के आत्मा को पकड़ना होगा। अच्छा, अनात्मा को छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने शरीर को काट के फेंक दो फिर एक आत्मा रह गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अनात्मा को छोड़ने का मतलब अनात्मा से तादात्म्य नहीं करना है, इतना ही काम है, और कुछ नहीं करना है। अनात्म वस्तुएं हमारे पास रहेंगी, हमारा घर रहेगा, हमारी संपत्ति रहेगी, हमारी गाड़ी रहेगी, हमारे संबंधी रहेंगे, सब रहेंगे, सब रहेंगे, मगर मैं और मेरे वाला तादात्म्य नहीं रहेगा। आइडेंटिफिकेशन, लव विदाउट अटैचमेंट, यू लव बट विदाउट अटैचमेंट, इतना करना है। हम लोग क्या करते हैं? लव विद अटैचमेंट, विद के साथ में थोड़ा सा आउट कर देना है बस, विदाउट अटैचमेंट, इतना काम हम लोग को करना है। लव विदाउट अटैचमेंट, आपको न घर छोड़ना है, न शरीर छोड़ना है, न मकान छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल उसके साथ में तादात में आइडेंटिफिकेशन, उसके साथ में अटैचमेंट की केवल छोड़ना है। देखो एक वर्ड आता है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा क्या है? जब भूत और वर्तमान का अनुभव एक ही व्यक्ति को होता है तो उसको हम प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। भूतकाल का हम, बचपन की हमारी जितने भी अनुभव हमको याद हैं, वर्तमान की अनुभव याद हैं, तो उसको हम प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। कौमार यौवन जरा का अनुभव है, मगर जन्म मृत्यु के संबंध में ये अनुभव हमारे पास नहीं है, ये अनुभव हमारे पास नहीं है, उसके बारे में हमको भ्रांति है। मगर यहां पर कह दिया भगवान ने देहांतर प्राप्ति पर धीर को, उसके बारे में कोई मोह नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। क्यों नहीं है? उसने किसको पकड़ के रखा है? आत्मा, अनात्मा ना आत्मा, आत्मा को पकड़ के रखा है, इसलिए उसको कोई किस्म की भ्रांति नहीं है। उसने अपने शरीर में देख लिया, बचपन आया, बचपन के बाद में जब यौवन आया, बचपन की मृत्यु हो गई, आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। यौवन आया, यौवन के जन्म के साथ में आत्मा का जन्म नहीं हुआ, सेम आत्मा चल रही है। यौवन की मृत्यु हुई, आत्मा की मृत्यु नहीं हुई। फिर बुढ़ापा आया, बुढ़ापे के जन्म के साथ में आत्मा का जन्म नहीं हुआ, अब बुढ़ापे के बाद में मृत्यु, फिर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, फिर जन्म होगा, फिर जो जन्म होगा, फिर आत्मा का जन्म नहीं हुआ। तो आत्मा एक है, अनुभव करता एक है, आपके सारे जीवन का अनुभव करता आप अकेले हैं। अवस्था बदलती रहती हैं, कौमार अवस्था आई, उसके बाद में यौवन आया, उसके बाद में वृद्धा, अवस्थाएं बदली, मगर अनुभव करता एक ही रहा। और जीवित काल में हमें प्रत्यविद्या का अनुभव हुआ, प्रत्यविद्या भूतकाल और वर्तमान काल का अनुभव हमको हुआ, प्रत्यविद्या हुई, मगर मरण के लिए वो प्रत्यविद्या नहीं हमको अनुभव होती है। मरने के बाद में क्या होता है उसका अनुभव हमको नहीं होता है। बहुत अच्छा, फिर उसके बाद में भगवान कहेंगे,
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख दाह, शीतोष्ण सुख दुख दाह, आगमा पायिनो नित्याः, आगमा पायिनो नित्याः, ताम स्थितिक्षस्व भारत, ताम स्थितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख दाह, आगमा पायिनो नित्याः, ताम स्थितिक्षस्व भारत।
देखो, अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान हमको समझ में आता है कि मरने के टाइम में दुख हो सकता है, मेरे को तो जीवित काल में दुख हो रहा है, मैं तो अभी शोक में हूं, ये क्यों हो रहा है मेरे को, समझाओ। तो भगवान थोड़ा सा डिटूर कर रहे हैं, जैसे वो हाईवे पर चलते चलते ना, कौशन डिटूर राइट, घूमना पड़ेगा आपको, तो भगवान भी थोड़ा डिटूर कर रहे हैं। तू एक वर्ड इसमें आया है, मात्रा स्पर्शास्तु, तू का मतलब अभी हम आत्मा की डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा डिटूर कर रहे हैं, सावधान, क्या डिटूर कर रहे हैं, अब हम आपके जीवित काल की कथा बताने जा रहे हैं कि आपको क्यों सुख दुख हो रहा है। बोलते मात्रा, मात्रा क्या है, इसका रूट जो है मां, मां का मतलब होता है मापना, मियते, मियते मतलब मापना, तो हमारी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो भी मापती हैं, मेजर करती हैं, क्या मेजर करती हैं, अच्छा ये ऐसा है, ये सोफा है, इसको माप लिया उसने और बता दिया ये सोफा है। स्पर्श, स्पर्श मतलब जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट हैं उसको हम लोग स्पर्श करते हैं, तो मात्रा हुई ज्ञानेन्द्रियां, कितनी ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच हैं, और सेंस ऑब्जेक्ट कितने हैं, स्पर्श कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, पांच सेंस ऑब्जेक्ट है। कौन कौन सी ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, पांच ज्ञानेन्द्रियां हुई और पांच सेंस ऑब्जेक्ट्स हुए, क्या क्या है वो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांच ही सेंस ऑब्जेक्ट हैं। मगर आपको अगर कहने को हम कहें कि भैया एक बना के लिखिएगा, एक चिट्ठा बनाइए, कितने सेंस ऑब्जेक्ट हैं दुनिया में, तो आपका कंप्यूटर फेल हो जाएगा। इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी। देखो शब्द जो है कान के लिए, शब्द स्पर्श स्किन के लिए, रूप आंख के लिए, रस टंग के लिए, गंध नाक के लिए, बस पांच सेंस ऑब्जेक्ट हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। तो कहते हैं मात्रा स्पर्शस्थ कौनते शीतोष्ण सुख दुख दा, दा मतलब देंगी ये ददाती। जैसे ही आपकी पांच ज्ञान इंद्रियां पांच विषयों के साथ में संपर्क होगा तो क्या होगा, बोले शीतोष्ण सुख दुख दा। जो चीज आप पसंद करते हैं वो आपको सुख देगी, जो चीज नहीं पसंद करते हैं वो दुख देगी। तो जैसे ही आप किसी वस्तु को देखते हैं या तो आप उसको देखेंगे देख के पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। पसंद करेंगे अगर वो वस्तु मिल गई तो आपको सुख मिला, और अगर नहीं पसंद करते हैं और वो आपको मिल जाए सुख होगा दुख होगा। बोलते हैं यही आपका दुख का कारण है। तो सिद्धांत क्या हुआ, सिद्धांत ये हुआ है कि जहां जहां आपकी पांच ज्ञान इंद्रियां जाती हैं पांच सेंस ऑब्जेक्ट्स को पकड़ती हैं छूती हैं तो वो आपको शीतोष्ण सुख दुख दा, बस सुख और दुख होगा। तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं मात्रा अर्थात शब्दादि विषयों को जिनसे जाना जाए ऐसी श्रोत्रादि इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श अर्थात शब्दादि विषयों के साथ उनके संयोग वे सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात शीत उष्ण और सुख दुख देते हैं। तब क्या करें फिर, अगर सुख दुख नहीं अगर चाहते हैं तो क्या अपनी ज्ञान इंद्रियां बंद कर लें क्या? इज दैट सॉल्यूशन? नहीं। ज्ञान से ही आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सुख दुख का हेतु क्या है, हेतु मतलब कारण क्या है? तो सुख दुख का कारण है हमारे कर्म। नंबर वन, आपने अच्छे कर्म किए तो आपको दुख होगा कि सुख? हाँ, अच्छे कर्म करने से दुख होगा कि सुख? कठिन प्रश्न नहीं है भाई। और खराब कर्म करेंगे तो दुख। अगर आज आपको दुख आया है इसका मतलब है इसके पहले आपने कर्म अच्छा किया होगा, खराब किया होगा तब आया दुख। आज आएगा आपको अगर सुख मिल रहा है तो आपका कर्म अच्छा। अगर आपको खाली सुख ही सुख चाहिए तो क्या करना होगा? अच्छा, पिछले जो कर्म कर चुके हैं उनका क्या होगा? जो खराब कर्म किए हैं उसका फल तो आएगा कभी ना कभी ना। एक तो कर्म हुआ हेतु, दूसरा बोलते हैं ईश्वर के कारण आता है। क्यों ईश्वर के कारण आता है? क्योंकि कर्म फल दाता ईश्वर है। आपको कर्म का अधिकार है मगर कर्म फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म फल आपके हाथ में नहीं है। हमको मिलियनियर बनना है, उसके लिए कर्म करना मेरे अधिकार में है, मगर हम बनेंगे कि नहीं वो किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। आप परीक्षा दे सकते हो, मगर फलदाता कौन है परीक्षा का? टीचर है, आपका टीचर दूसरा है, स्टूडेंट नहीं है। हम कर्म करेंगे मगर फल ईश्वर देगा। क्यों ईश्वर देगा? ईश्वर इसलिए देगा कि हमको हमारे कर्मों के बारे में पता नहीं है। हमने पिछले जीवन में क्या क्या कर्म किए इनका हमको पता नहीं है, और हमें फ्यूचर में क्या क्या चीजें चाहिए ये भी नहीं पता है। ईश्वर को पता है, ईश्वर को हमारे सारे पिछले कर्म पता है, ईश्वर को यह भी पता है कि इनको आगे क्या चाहिए, यह भी पता है उसको, उसके हिसाब से वो हमें कर्मफल देता है। तो सुख दुख का एक हमारे कर्म है, हेतु हमारा कर्म के कारण हमें सुख दुख मिलता है, दूसरा है ईश्वर द्वारा मिलता है, और तीसरा जो है अनित्यता के कारण मिलता है। अनित्यता मतलब सारा सारी की सारी अनात्म वस्तुएं नित्य है ना अनित्य है, और हर अनित्य वस्तु दुख देगी। तो जहां अनित्य वस्तुएं सारी हैं उसको हम क्या कहते हैं, दुखालय कहते हैं। याद रखना, बार बार आपको हम याद दिलाएंगे कि अनित्य वस्तुओं का घर क्या है, बोले दुखालय है, और दुखालय में हम सुख खोज रहे हैं। हम लोग इतने बुद्धिमान हैं, दुखालय सुख खोजते हैं। तो इसके बाद कहते हैं, अथवा जिन स्पर्श किया, जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श अर्थात शब्दादि विषय, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह अर्थ होगा कि मात्रा स्पर्श यानी श्रोतादि इंद्रियां और शब्दादि विषय के साथ में शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। अच्छा देखो, इसमें शीत और उष्ण जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं अनियत। अनियत क्यों कहते हैं इसको? भारतवर्ष में अभी बहुत गर्मी है, वहां पर से थोड़ी ठंडी आ जाए तो वो बोलते सुखी हो जाएंगे ना। अच्छा यहां पर शिकागो में बहुत ठंडी है, थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो जाता है तो हम क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। सेम शीत, एक ही ठंडक इंडिया में सुख दे रही है, अमेरिका में दुख दे रही है। एक ही गर्मी अभी इंडिया में दुख दे रही है, हम शिकागो में खुद जल्दी समर आओ हमको चाहिए, सुख दे रही है, इसलिए वो अनियत है। शंकराचार्य भी लिखते हैं, शीत कभी सुख रूप होता है कभी दुख रूप होता है। देखो एक ही शीत है, कभी सुख रूप, इंडिया में अभी सुख रूप है वो, अमेरिका में दुख रूप है, उनको मालूम था। इसी तरह उष्ण भी अनिश्चित रूप है, परंतु सुख और दुख निश्चित रूप है, सुख और दुख निश्चित रूप है। वो चाहे आप भारतवर्ष में हो चाहे अमेरिका में हो, जहां भी होगा सुख और दुख वो नियत है, उसमें चेंज नहीं होता है, क्योंकि उनमें व्यभिचार फेर फार नहीं होता, इसलिए सुख दुख से अलग शीत और उष्ण ग्रहण किया जाता है। तो इनकी अब खासियत क्या है भगवान? तो बोलते हैं आगमा पाइनो अनित्या, ये जितने भी आपको सुख दुख मिलते हैं ना इस दुखालय से, वो कैसे हैं? आगमा, ये आएंगे। भाई क्यों आएंगे? आपने कर्म किए हुए हैं ना, कर्मफल तो आएगा, कौन भोगेगा आपका कर्मफल? हम थोड़ी ना भोगेंगे, जिसके जिसके कर्मफल हैं उसको भोगना पड़ेंगे। आगमा पाइनो, बोले जाएंगे भी, ये भी गारंटेड है जाएंगे भी। क्यों भाई जाएंगे क्यों? क्योंकि कर्म जो है टाइम के अंदर लिमिटेड होता है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर हमने एक कर्म किया। जैसे मान लीजिए आपने एक महीने तक नौकरी की, एक महीने की नौकरी के करने के बाद में आपको जो फल मिला वो कितना फल मिलेगा, वो भी लिमिटेड है। काम आपने 30 दिन किया तो उसका फल कितना मिलेगा? अनंत काल तक तो नहीं मिलता रहेगा ना, एक महीना काम करो उसके बाद में टिल डेथ जो है पैसे आते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कर्म लिमिटेड इन टाइम है, उसका फल भी अनलिमिटेड नहीं होगा, लिमिटेड होगा। इसलिए अगर आपको दुख आया है किसी कर्म के कारण, तो दुख की सीमा भी लिमिटेड ही होगी। आगमा आएगा भी, पाइनो ये जाएगा भी, मगर होता क्या है, सुख की घड़ी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। अरे आया सुख, कब चला? सर्दी यहां, गर्मी आई आई आई, अरे आई और गई, यहां सितंबर अक्टूबर आया गया, अरे कब गया? और ठंडी रहती तो 2-3 महीने लगता, 9 महीने तक चल रही है, जाता ही नहीं है। दुख जो है लगता है बड़ा भारी है, बड़ा लंबा चलता है। आगमा पाइनो अनित्या, अनित्या मतलब ये सारे के सारे अनित्य हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है इसमें। तान तितिच्च स्वभारत, हुए अर्जुन तुम इसको सहन करो। अब प्रश्न उठता है क्यों सहन करें, क्यों सहन करें? तो कहते हैं कि अगर आप सहन करोगे तो उसके अंदर आपको तीन चीजें बढ़ेगी आपकी। एक तो आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, दूसरा आपका मनोबल बढ़ेगा, और तीसरा आपका धीरज बढ़ेगा, धैर्य आपका बढ़ेगा। सहन शक्ति बढ़ी, मनोबल बढ़ेगा और धैर्य बढ़ेगा। इससे ज्यादा एक और चीज होने वाली है जो भगवान अगले श्लोक में कहेंगे, उसको भी हम आज देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अगले सत्र में देखेंगे।
यम हि न व्यथयन्ते ते, यम हि न व्यथयन्ते ते, पुरुषं पुरुषर्षभ, पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःखसुखं धीरं, समदुःखसुखं धीरं, सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते, यम हि न व्यथयन्ते ते, पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःखसुखं धीरं, सोमृतत्वाय कल्पते।
कहते हैं यम हि न व्यथयन्ते ते, जिसको व्यथा नहीं होती, किसमें वो शीतोष्ण हो गया, सुख दुख आ गया, कोई व्यथा नहीं है, इक्विपाइज बराबर है, उसको ये मालूम हो गया सुख आया, ये भी ज्यादा देर नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, ठीक है। दुख आ गया तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि भाई दुख जब आए तो उसको पूछो भाई आओ भाई बैठो, क्योंकि इसको मालूम है ये दुख जाने वाला है, बैठो बैठो बैठो, चलो चाय कॉफी क्या पियोगे बताओ। तो दुख बोलेगा मैंने तो इसको रुलाने के लिए आया था, ये तो रोते ही नहीं है, चलो यहां से अब चलो चलते हैं। तो जो आदमी सुख दुख में व्यथित नहीं होता, मतलब एक समान सा रहता है, यम ही व्यसनते थे पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम, सो अमृतत्वाय कल्पते। सम सुख दुख, सुख दुख आया हम सम है, इक्विपाइज हैं। अभी हमारी क्या पोजिशन है, सुख आता है तो खुश हो नहीं जाते, सारी रात पार्टी करते हैं, फिर बुलाते हैं आ जाओ हम बहुत सुखी हैं, नाचो गाओ मौज करो आ जाओ हम बहुत सुखी हैं अभी। और दुखी हो गया तब क्या हुआ, दरवाजा बंद, फोन ही नहीं उठाना, दुखी हैं अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मेंटल स्टेट है ना, जब सुख होता है तो आप जंप करते हो, दुख जब होता है तो आप जो डिप्रेशन में चले जाते हो। अगर आप सम रहते हो तो वो इक्विपोइज अवस्था में मन आपका शांत रहता है। तो ये आर्ट आपको सीखना होगा, सीखने का मतलब क्या है, ये ज्ञान लेना होगा। ज्ञान क्या है कि सुख दुख आएंगे, ये सारे के सारे टेम्पररी हैं, सब आएंगे, क्यों आएंगे, हमारे कर्म आएंगे, किसके थ्रू, हमारे अपने बच्चों से, माता पिता से, संबंधियों से, घर से, मकान से, गाड़ी से। आपकी गाड़ी में थोड़ा सा डेंट हो जाता है, सुख होता है क्या, दुख होता है, दुख होता है, इनके थ्रू आते हैं। और हम कहते हैं किसको, हम फिर दाई कर देते हैं, इनके कारण हम दुखी हैं। असली कारण क्या है, तो जो आदमी इसको समझता है कि ये विज्ञान ऐसे है, ऐसे हो रहा है, तो वो व्यथित नहीं होता, क्योंकि जो हम कर्म कर चुके हैं उसको हम कुछ नहीं कर सकते, अब वी कांट अनडू इट नाउ, हो गया सो हो गया, अब तो फल लेना होगा। कर्म करने के पहले अगर रुक जाते ठीक था, कर्म अगर कर दिया फल तो आएगा। अब अगर हम उसके अंदर रह गए तो ऐसे आदमियों को उन्होंने कहा है कि अमृत तत्व पाने योग्य है। देखो कितनी बड़ी बात है, जिसने ये आर्ट सीख लिया कि हम सुख दुख में सम रहेंगे, जिसको व्यथा नहीं होती है, वो आदमी फिर अमृतत्व कल्पते, वो अमृत पाने योग्य है। अमृत मिला नहीं है अभी, अमृत पाने योग्य है। अमृत पाने योग्य है मतलब उसका मन शांत है, केवल शांत मन में ज्ञान बैठ सकता है। अगर मन आपका अशांत है, अशांत मतलब आप सुख के अंदर जंप कर रहे हो या दुख के अंदर अवसाद में बैठे हुए हो, दोनों केस में ज्ञान नहीं बैठेगा। जब मन शांत होगा, इक्विपोइज्ड होगा, तभी आपके अंदर उसके अंदर ज्ञान बैठेगा। तो अगर आपने तितिक्षा की, आपने सहन किया, तो सहन के साथ में आपका मनोबल बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, और साथ में आपको यू बिकम फिट फॉर द नॉलेज ऑफ सेल्फ, ये भी आपको मिलेगा। चाहिए आत्मज्ञान? मन कैसा चाहिए फिर आपको? तो आप कभी भी सुख दुख आए ना, तो पहले उसकी जो आप एनालिसिस कीजिए, कहाँ से आया, वो देखेगा अनात्म वस्तु में ले जाएगा आपको, बराबर अनात्म वस्तु में लेके चला जाएगा। कहाँ से सुख आ रहा है? अनात्म वस्तु से आ रहा है। दुख कहाँ से आ रहा है? अनात्म वस्तु से आ रहा है। जो अनात्म वस्तु से सुख दुख आने वाला है वो कैसा है? वो आएगा, आगमा पाइनो, जाएगा भी ये, और वो अनित्य है। तो ये ज्ञान को आप लेके अपने जीवन में उतारिए। साइंस को समझ लीजिए, साइंस को समझ लेने से, विज्ञान को समझ लेने से बहुत चीज़ें सहज हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बारे में भगवान डिटूर हो गया, वो जो है डाइवर्सन खत्म हो गया है, अब फिर आत्मा पर आने वाले हैं, उसको फिर हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। प्रत्यविद्या, प्रत्यविद्या का मतलब ये हुआ कि हमको भूतकाल और वर्तमान का जो है ज्ञान हमें है, उसको प्रत्यविद्या कहते हैं। मगर मरण के बाद का ज्ञान हमको नहीं है, इसलिए प्रत्यविद्या वहां नहीं लगती है, उसके बारे में हमको नहीं ठीक मालूम है। मगर जो ज्ञानी है उसको ये मालूम है कि अनुभव करता जो आत्मा जो है, जो भूतकाल में बचपन में था, कौमार में, और उसके बाद में यौवन में, उसके बाद में बुढ़ापे में था, वो मरने के बाद में भी रहेगा और फिर नए जीवन में भी रहेगा, वो अनुभव करता एक है। हमारी प्रत्यविद्या केवल जीवित काल तक लिमिटेड है, ज्ञानी की प्रत्यविद्या, यही डिफरेंस है। ओ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।